بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے جلد نمبر 24 کے ناول جاسوسی دنیا نمبر 75 زمین کے بادل ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں ابن صفی. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. کتاب کا پارٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 3 سب سے پہلے پیش رس. یہ میری 102 کہانی ہے. اب تک 28 ناول عمران کے سلسلے کے لکھے ہیں اور 74 جاسوسی دنیا کے سلسلے کے, اور ان سلسلوں نے مجھے کچھ ایسا مسلسل بنا رکھ دیا ہے کہ بعض اوقات کسی مشین ہی کی طرح ٹھپ بھی ہو جانا پڑتا ہے. یہ جو اکثر میری کتابیں آپ تک دیر سے پہنچتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے. اب دیکھیے نا کہ یہی کتاب آپ تک اعلان کے خلاف کچھ تاخیر سے پہنچ رہی ہے. مشین کی طرح ٹھپ ضرور ہو جاتا ہوں مگر دماغ مشین نہیں ہے. کبھی کبھی وہ معدے کے آنجرات سے بھی شکست کھا جاتا ہے, لہذا نتیجہ معلوم. میرا پہلا ناول دلیر مجرم تھا. پہلا ناول تھا اس لیے کسی بیرونی سہارے کی بھی ضرورت تھی, لہذا اس کا مرکزی خیال مغربی ادب سے لیا گیا تھا. یہ ایک جرمن مصنف کا کارنامہ تھا جس پر دنیا کے کئی مصنفوں نے تباہ آزمائی کی ہے. مثال کے طور پر پیٹر شینی نے اسی پلاٹ کو سینٹرل ڈیزائن کے نام سے پیش کیا ہے. وکٹر گن نے یہی کہانی آئرن سائڈس کے نام سے لکھی ہے. وکٹر گن کا انداز پیٹر شینی سے کہیں بہتر ہے. اس کے مقابلے میں پیٹر شینی کا ناول کسی بچے کا لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے. حالانکہ پیٹر شینی وکٹر گن کے سے زیادہ مشہور ہے. ہندی میں بھی آپ کو اسی پلاٹ پر ایک ناول قیامت کی رات کے نام سے مل جائے گا. اس کے مصنف کا نام مجھے یاد نہیں رہا. ہاں تو دلیر مجرم کا پلاٹ میں نے انگریزی سے لیا تھا, لیکن فریدی اور حمید میرے اپنے کردار تھے. میں نے اس کہانی میں کچھ ایسی دلچسپیوں کا اضافہ بھی کیا ہے جو اوریجنل پلاٹ میں نہیں تھے. اس کے علاوہ جاسوسی دنیا میں ایسے ناول اور بھی ہیں جن کے پلاٹ میں نے انگریزی سے لیے تھے, مثلاً پرسرار اجنبی, صفحہ نمبر 4, رکاسا کا قتل, ہیرے کی کان, خونی پتھر. ان 5 ناولوں کے علاوہ آپ کو میرے 102 ناولوں میں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس کا پلاٹ میرا اپنا نہ ہو. انور رشید, عمران اور قاسم جیسے خاص کردار میرے اپنے تخلیق کردہ ہیں. ذہنوں سے چپک جانے والے دوسرے کردار بھی اوریجنل ہی ہیں, مثلاً سنگ ہی. اور ایسی ہی دوسرے کردار, البتہ خوفناک ہنگامہ کا کردار پروفیسر دورانی انگریزی سے آیا ہے. صرف کردار ہی کہانی میری اپنی ہے. اسی طرح پہاڑوں کی ملکہ کا بن مانس اور سفید ملکہ بھی انگریزی ہی سے آئے ہیں, لیکن پلاٹ میرا اپنا ہے. عمران کے سارے ناول بے داغ ہیں. ان میں نہ آپ کو کوئی ایسی کہانی ملے گی جس کا پلاٹ انگریزی سے لیا گیا ہو اور نہ کوئی ایسا کردار ملے گا. اس طرح ان 102 ناولوں میں بمشکل 7 یا 8 ناول ایسے نکلیں گے جن میں کسی قسم کی ملاوٹ مل سکے, ورنہ بقیہ سب خالص ہیں. وہ 5 ناول جن کے پلاٹ میں نے انگریزی سے لیے ہیں ترجمے نہیں ہیں, ان کی ایک ایک سطر پر میرا دعویٰ ہے. اب آئیے زمین کے بادل کی طرف. میں نے موجودہ ذہنی انتشار کے عالم میں بھی انتہائی کوشش کی ہے کہ یہ ناول دلچسپ بن سکے. میں کہاں تک اس میں کامیاب ہو سکا ہوں اس کا فیصلہ آپ ہی کر سکیں گے. عرصے سے تاریک وادی کا تقاضا تھا. میں نے کہا اسی نمبر میں اپنا یہ وعدہ پورا کر دوں. بہت دنوں سے پڑھنے والے خواہاں تھے کہ عمران, حمید اور فریدی کو کسی ایک کہانی میں پیش کیا جائے. یہ خواہش بھی پوری کی جا رہی ہے. عمران اور قاسم کی گٹ جوڑ سے آپ کافی محفوظ ہوں گے. حمید نے بھی خاصے شگوفے چھوڑے ہیں. کہانی میں بھی میں نے نیا پن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. इसे आप पिछले तमाम नॉवलों से मुख्तलिफ पाएंगे। इब्ने सफी 16 अप्रैल सन 1958। सफा नंबर 5, दियो की बेहोशी। जैसे ही हवाई जहाज ने जमीन छोड़ी, कासिम के चेहरे पर ऐसे ही आसार नजर आने लगे जैसे हलक में कोई चीज अटक गई हो। हमीद ने मुस्कुराकर उसे आंख मारने अंदाज में एयर होस्टेस की तरफ देखने लगा। फरमाइए जनाब। एयर होस्टेस बड़े अदब से उसकी तरफ झुकी। कुछ नहीं, कासिम भराई हुई आवाज में बोला, लेकिन एयर होस्टेस ने उसे क्या करने की थैली पकड़ा ही दी। उसके बाद वो करीब ही के दूसरे मुसाफिर की तरफ मुतवज्जे हो गई। हमीद कासिम के बराबर ही बैठा हुआ था। उसने कहा, पता नहीं क्यों हवाई सफर के दौरान में इश्क करने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। कासिम ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन हलक से सिर्फ उपकाई की आवाज निकली। फिर थैली भी क्यों ना मुंह उसके मुंह से जा लगती। वो देर तक किसी जंगली भैंसिये की तरह हलक फाड़ता रहा। फिर जब जहाज की उठान का सिलसिला खत्म हो गया और वो एक मखसूस बुलंदी पर तैरने लगा, तो कासिम की चिंगारें भी बतरीज हल्की होती गईं। फिर कुछ देर बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया। चेहरे तो सबके फुक नजर आ रहे थे, लेकिन भैंसियों की तरह डकराने वाले कम ही थे। थोड़ी देर बाद कासिम ने भराई हुई आवाज में कहा, ये जो साला जहाज ऊपर चढ़ने लगता है तो ऐसा मालूम होता है जैसे आपे हलक की तरफ खींच रही हूँ। अब ठीक है हमीद भाई। सफा नंबर 6, ठीक ही होगा, हमीद ने बेजारी से कहा। अमीर तुम तो खफा क्यों हो गए? अब कोई कह भी नहीं ना करे। अगर ये जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाए तो कैसी रहेगी? हमीद ने कहा। अरे बाप रे, कासिम ने भौंकला कर टोन पर हाथ फेरा। ऐसी बातें जबान से ना निकालिए जनाब, एक उधेर उम्र के आदमी ने कहा जो अगली सीट पर था। अगर हो ही गया तो हम क्या कर लेंगे, हमीद बोला। फिर भी ऐसी बातें ना कहनी चाहिए, खुदा करे ये जहाज यहीं फट जाए, हमीद ने कहा। आप अजीब आदमी हैं, उधेर आदमी को गुस्सा आ गया। अल्लाह ने चाहा तो इस जहाज में आग लग जाएगी। हमीद का अंदाज चिढ़ाने का सा था। आपको शर्म आनी चाहिए, पिछली सीट से एक औरत ने कहा। अब तो ये जहाज जरूर गारत हो जाएगा, आप खुद गारत हो जाएंगे, औरत को भी गुस्सा आ गया। जहाज के गारत होने के बाद मेरी सलामती का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा खामोश रहिए, तीसरा आदमी बोल पड़ा। जहाज में बोलना ममनू नहीं है, हमीद ने कहा, और अगर है तो यकीनी तौर पर क्रैश होगा। जबान बंद कीजिए, उधेर उम्र का आदमी फिर गिर जा। खुदा गारत करे इस जहाज को, खुदा गारत करे। चुप रहिए, उधेर उम्र जो बहुत ज्यादा ज़ईफ़ुल एतिकाद मालूम होता था, हलक फाड़ कर चीखा और सारे ही मुसाफिर इनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। और फिर ये बात एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। लोग हमीद को इस तरह घूरने लगे जैसे वो पागल हो। एयर होस्टेस फ्रांसीसी थी, उसे इस हंगामे की जब वजह मालूम हुई तो वो सीधी हमीद की तरफ आई। दूसरों को परेशान करने से क्या फायदा जनाब, उसने खुशगवार लहजे में कहा। क्या ये सब पागल हो गए हैं, हमीद ने उससे पूछा। सफा नंबर 7, जरूरी नहीं है कि सारे ही मुसाफिर आपकी तरह इस मजा से महफूज होने की सलाहियत रखते हों। आपका क्या ख्याल है, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। मैं भी इसे अच्छा नहीं समझती कि दूसरों को दहशत ज्यादा किया जाए। पहले मैंने सिर्फ खुद को दहशत ज्यादा करने की कोशिश की थी, मगर काम नहीं चला। अमीर चुप भी रहो हमीद भाई, कासिम ने उर्दू में कहा, कहीं बुरा ना मान जाए। होस्टेस बुरा समूह बनाए हुए आगे बढ़ गई थी। हमीद खामोश हो गया, खफा हो गई। हमीद बुड़बुड़ाया, मना लो दौड़कर गधे कहीं के। देखो प्यारे, कासिम आंखें निकाल कर बोला, मैं जहाज पर झगड़ा नहीं करना चाहता, अगर करो भी तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। देखो प्यारे, कासिम आंखें निकाल कर बोला, अंग्रेजी में बताना ताकि गैर मुल्की मुसाफिर भी समझ सके। अच्छा अच्छा, जहाज को लैंड करने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर यहीं इसी वक्त लड़ जाओ तो क्या हर्ज है, इस तरह मैं शर्मिंदगी से बच जाऊंगा। कैसी शर्मिंदगी, अगर जहाज तबाह ना हुआ। लेकिन अगर तुम उठकर मुझसे कुश्ती लड़ना शुरू कर दो तो जहाज यकीनी तौर पर उलटकर जमीन पर जा पड़ेगा। अरे बाप रे, चलो उठो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बात बिगड़े। कासिम पत्थर की मूर्ति की तरह बेहिसो हरकत हो गया था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो हिलने झुलने में भी जहाज के गिर जाने का खतरा महसूस कर रहा हो। बस जहनी रौ की बात थी, बहक गई होगी। कासिम ही ठहरा, हमीद शरारतों के मूड में था। अब हेयर होस्टेस उसकी तरफ मुस्कुरा कर नहीं देखती थी। उस पर उसे और ज्यादा ताव आया। फिर उसने सोचा कि अगर सारे ही लोग उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने मुत्तफिका तौर पर उसे पागल समझ लिया तो ये सफर जारी ना रह सकेगा। सफा नंबर 8। कासिम जो किसी खौफजदा परिंदे की तरह पलके झपका रहा था, कुछ देर बाद अचानक इस तरह चौंक पड़ा जैसे कोई बात याद आ गई हो। अमीर जाओ, वो भराई हुई आवाज में बोला। तबाह हो जाने दो साले को, मैं तो मरने ही के लिए निकला था। क्या बक रहे हो, हमीद आंखें निकाल कर बोला। मैं ठीक कह रहा हूँ, देखता हूँ कौन साला मुझे मरने से रोकता है। मैं चुगत नहीं हूँ। चुगत, हमीद ने तसी की। नहीं, चुगत किसी गधे ने बताया है। किस गधे ने बताया है? अमीर तुम खुद गधे, अब जरा संभल कर बात करना। मैं मरने के लिए घर से निकला हूँ, समझे? मरने का इंतजाम तो वहीं हो सकता था, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? पता नहीं आप लोग कैसे हैं। पीछे बैठी हुई औरत ने कहा, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, आप लोग मुस्तकिल तौर पर मरने की बातें किए जा रहे हैं। अरे ही। कासिम मुड़कर अहमकाना अंदाज में हंसा। मैं यही चाहता हूँ मोहतरमा, औरत कुछ ना बोली। इतने में एयर होस्टेस ने बुलंद आवाज में कहा, कैप्टन हमीद प्लीज, आपका फोन है। हमीद उड़ गया। ओह आप हैं, होस्टेस जबरदस्ती मुस्कुराई। हमीद कुछ कहे बगैर लॉल्सली की फोन के कैबिन में आया। हेलो, उसने दूसरी तरफ से बोलने वाले को मुखातिब किया। कैप्टन हमीद, दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं फरीदी हूँ। तुम लोग मैड्रिड में उतर जाओ और मेरे दूसरे पैगाम का इंतजार करो। तुम्हारे कयाम के लिए इजाजत हासिल कर ली है बुमैनियों में कयाम करना। सफा नंबर 9। हमीद ने कुछ कहना चाहा लेकिन सिलसिला मुनकिता हो चुका था। वो सर पीट कर अब फिर अपनी निश्चित पर वापस आ गया। ये कॉल लंदन से आई थी। हमीद को सिर्फ इतना ही मालूम था कि फरीदी ने तवील मुद्दत के लिए रुख्सत हासिल की है और यूरोप की सियाहत का इरादा रखता है। खुद एक हफ्ता पहले इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था और कह गया था कि हमीद उसके पैगाम का इंतजार करे। पिछले दिन हमीद को उसकी तरफ से इत्तला मिली थी कि वो कासिम समेत रवाना हो जाए, लिहाजा लंदन तक उसके 2 टिकट हासिल कर लिए गए थे। और अब जहाज पर इत्तला मिली कि वो दोनों मैड्रिड ही में रुककर इसके दूसरे पैगाम का इंतजार करें। जाहिर है ये बताने की जरूरत ही नहीं कि इस लासिकी फोन कॉल ने हमीद की खोपड़ी का क्या हाल किया होगा। किसका फोन था, कासिम ने पूछा। मेरे दादा की रूह आलम बाला से बोल रही थी, हमीद ने हुसीले लहजे में जवाब दिया। अमित तुम तो खफा क्यों हो रहे हो, मेरे ठेंगे की रूह बोल रही थी। आंखें ना दिखाया करो, मुझे अब मैं अपने बाप से भी नहीं डरता, हमीद कुछ ना बोला। वो कई दिनों से सोच रहा था कि आखिर कासिम को इस बार फरीदी ने क्यों दावत दी है। कासिम से पूछना उसने मुनासिब नहीं समझा था और फरीदी भला क्यों बताने लगा। वैसे कासिम ने भी उसने असल बात ना बताई होगी, फिर पूछने से फायदा ही क्या। मगर उस वक्त चूंकि लासी की मुखातिब ने इसकी खोपड़ी से बाहर कर दिया था, इसलिए पूछ ही बैठा, तुम कहाँ मरने जा रहे हो, तुमसे मतलब? मैं तो मैड्रिड में उतर जाऊंगा, मैं भी उतर जाऊंगा, कासिम ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर आहिस्ता से बोला, अमी हमीद भाई, इस औरत की उम्र क्या होगी जो पीछे बैठी हुई है, पूछ कर बताता हूँ, हमीद ने औरत की तरफ मुड़ते हुए कहा। अरे अगे अज अज कासिम भौंकरा गया। औरत भी शायद यही समझी थी कि हमीद उससे मुखातिब होगा, मगर हमीद फिर कासिम की तरफ मुतवज्जे होकर बोला। सफा नंबर 10। 11:30 बजे हैं। अच्छा अच्छा, कासिम अहमकाना अंदाज में सर हिलाने लगा। कर्नल ने इस सफर के बारे में तुमसे क्या कहा था? हमीद ने पूछा। कुछ भी नहीं। अरे तुम तैयार कैसे हो गए थे? हमीद झंझलाकर बोला। बस कुछ रुपया अलाइड बैंक ऑफ इंग्लैंड में मुंतकिल कराया, सामान दुरुस्त किया और तैयार हो गया। बस तैयार होने में क्या लगता है हमीद भाई? हमीद का गुस्सा तेज होने लगा। वो ये मालूम करना चाहता था कि आखिर कासिम यकबैक इतने लंबे सफर के लिए तैयार कैसे हो गया था। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि तुम इस सफर पर तैयार क्यों हो गए थे? कह तो दिया कि मैं मरना चाहता हूँ, अभी तो घर पर ही जहर पी लिया करो। नहीं हमीद भाई, कासिम मखमूम लहजे में बोला, मैं उस उल्लू की पट्टी के सामने नहीं मरना चाहता, वो मेरी लाश की भी जान जलाएगी। आखिर वो उल्लू की पट्टी, ए यू शट अप, तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, कासिम घुर्राया। तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे हक है, बस है तुम खामोश रहो। अम्मी क्यों खामखा झगड़ा करना चाहते हो? मैं कहता हूँ अब खामोश रहो। अच्छी बात है, कासिम हुसीली आवाज में बोला, लेकिन अब मुझसे बात ना करना। ये सफर इस लासिकी मुखातबे के बाद उतार देने वाला हो गया था। हमीद सोचने लगा छुट्टी ली गई है सियाहत के लिए, लेकिन इस सियाहत में भी घमाओ फिराव पैदा हो गए हैं। यानी फला दिन लंदन के लिए रवाना हो जाओ, फिर मैडर्ड ही में उतर जाओ। सफा नंबर 11। इसके बाद शायद ये इतला आए कि बकिया जिंदगी मैडर्ड ही के किसी यतीम खाने में गुजार दो। कुछ भी हो, मैडर्ड में उन्हें बहरहाल रुक जाना पड़ा। कासिम बहुत खुश था, मगर बुमैनियो जैसे बड़े और शानदार होटल में चकराकर रह गया, जहाँ सर्व करने वाली ज्यादातर खूबसूरत लड़कियाँ थी। दूसरी तरफ वो लड़कियाँ उसकी खुराक देखकर चकरा गई थीं। 3-4 घंटे के अंदर अंदर इस ड्यू की शोहरत दूर दूर तक हो गई, जो 10 आदमियों का खाना तना खा जाता था। और कासिम था कि डाइनिंग हॉल में जमे रहने पर टुल गया था। हमीद ने लाख चाहा कि उसे उसके कमरे में वापस ले जाए, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। डाइनिंग हॉल में इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि होटल का सुपरवाइजर भौंकला गया। कासिम अपनी मेज पर जमसा गया था। कभी उसके होंठों पर मुस्कुराहट नजर आती और कभी अहमकाना अंदाज में उसका मुंह खुल जाता। हमीद ने महसूस किया कि वो गैर इरादी तौर पर वहाँ बैठा हुआ है, उठना चाहता है मगर उठ नहीं सकता। बौखलाहट में ऐसे 2-4 मकाम आते हैं। भीड़ में इजाफा होता रहा, सारी कुर्सियां भर गई और लोग जा बजा खड़े हुए नजर आने लगे। तमाशाइयों में लड़कियों की तादाद ज्यादा थी। अबे उल्लू के, उठो भी उल्लू के, हमीद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कासिम का जुमला पूरा होने से पहले ही बोल पड़ा, अरे बाप रे, कैसे उठो, मेरे उठते ही ये सालियां हंसने लगेंगी। नहीं हंसेंगी, तुम उठो भी तो, हमीद रिच होकर बोला। नहीं हंसेंगी, इनके चेहरों से मालूम होता है, कासिम ने भराई हुई आवाज में कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं उठ सकता, तुम जाओ ना। अरे अभी अभी बेचारा सुपरवाइजर गिड़गिड़ा रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाऊं। मरने दो साले को, तुम्हें क्यों फिक्र पड़ गई है, मैं देखता हूं कि ये सालियां कब तक खड़ी रहती हैं। सफा नंबर 12। हमीद थक हार कर अपने कमरे में चला आया। तमाशा बनना उसे पसंद नहीं था, मगर तकरीबन आधे घंटे बाद उसे फिर डाइनिंग हॉल का रुख करना पड़ा। पता नहीं कासिम पर क्या गुजरी हो, उसने क्या क्या गुल खिलाए हो। डाइनिंग हॉल में अब भी भीड़ ही नजर आई, मगर अब लोग सिर्फ कुर्सियों ही पर थे। खड़े रहने वाले शायद सुपरवाइजर के हालेजार पर रहम खाकर वापस चले गए थे। कासिम अपनी मेज ही पर मौजूद था। हमीद को देखकर उसने अहमकाना अंदाज में सर को जुम्बिश दी थी, लेकिन हमीद बुरा सा मुंह बनाए हुए डाइनिंग हॉल से बाहर चला आया। लेकिन बरामदे में पहुंचते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। नोटिस बोर्ड पर हाथ से लिखा हुआ एक पोस्टर नजर आया, जिसकी तहरीर के मुताबिक इस वक्त डाइनिंग रूम के दाखिले पर टिकट लग गए थे और इसकी वजह कासिम ही था। हमीद को होटल वालों की सितम जरीफी पर बहुत हंसी आई। उन्होंने पोस्टर में 20वीं सदी के इस ड्यू का भी हवाला दिया था, जो 10 आदमियों की खुराक अकेले हजम कर जाता था। हमीद फिर डाइनिंग हॉल में वापस आ गया। अब वो सुपरवाइजर के ऑफिस की तरफ जा रहा था। सुपरवाइजर ने इसके इस्तकबाल के सिलसिले में बड़ी खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, गालिबन आप इस पोस्टर के सिलसिले में एहतजाज करने आए हैं। यकीनन, हमीद ने जबरदस्ती अपने लहजे में वसीलापन पैदा करते हुए कहा, ये पोस्टर हमारे लिए अहानत आमेज है, हमारी दुश्वारियों पर भी नजर रखिए जनाब, उसने भी नाखुशगवार लहजे में कहा। मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि इन्हें इनके कमरे में ले जाइए, आपने देखा ही होगा कि कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, मजबूरन हमें बाहर नोटिस बोर्ड पर वो पोस्टर लगाना पड़ा। फिर वो सांस लेने के लिए रुका और फिर मुस्कुराकर बोला, अगर आप चाहें तो टिकटों की आधी आमदनी आपकी खिदमत में पेश की जा सकती है। फिर गौर फरमाइए कि ये फेल कितना दानिशमंदाना था। बेहद, हमीद बुरा सा मुंह बनाकर बोला, वो बेचारा एक सीधा सादा आदमी है, क्या वो पेशावर नहीं? सफा नंबर 13। क्या मतलब? देखिए, अभी कुछ देर गुजरी, उन्होंने मुझे बताया था कि वो लोहे की मोटी मोटी सलाखें मोड़ सकते हैं, मुंह से लोहे के बड़े बड़े गोले निकाल सकते हैं, अपने जिस्म से लिपटी हुई लोहे की जंजीरें तोड़ सकते हैं, और भी कई कर्तव्यों के नाम उन्होंने लिए थे। ये सुनकर हमीद को कासिम पर गुस्सा आ गया, जो खुद तमाशा ही बन गया था, अब हमीद की मिट्टी भी पलीत कर देने के दर पे नजर आ रहा था। वो दांत पीसता हुआ सुपरवाइजर के कमरे से बाहर आया। कासिम अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसकी पुश्त हमीद की तरफ थी। हमीद का दिल चाहा कि उसकी गर्दन ही दबोच ले। वो उसकी मेज पर पहुंच कर रुका। कासिम की आंखें बंद थी और वो इतना तना हुआ बैठा था। हमीद के मुंह में जो भी आया उसे सुनाकर रख दिया, लेकिन ना तो कासिम की आंखें ही खुली और ना उसके चेहरे से ये जाहिर हुआ कि वो हमीद की गालियां सुनता रहा है। हमीद ने उसके शाने पर हाथ रखकर झटका दिया और वो मेज पर आ रहा। पता नहीं वो बेहोश था या गहरी नींद सो रहा था। फिर कुछ देर बाद हमीद को यकीन हो गया कि वो नींद नहीं बल्कि बेहोशी ही थी। कासिम की मेज के करीब भीड़ बढ़ने लगी। ये नई मुसीबत थी। हमीद सोच रहा था कि अब उसे किस तरह कमरे में ले जाना चाहिए, मगर वो नौ मन की लाश कोई भी हाथ लगाने पर तैयार नजर नहीं आता था। काफी देर बाद सुपरवाइजर ने कहीं से एक स्ट्रेचर का इंतजाम किया और फिर 8 वेटर उसे स्ट्रेचर पर उठाकर उसे कमरे में लाए। डॉक्टर जो पहले ही तलब कर लिया गया था उसका मुआयना करने के बाद बोला, ये बेहोशी तो किसी नशा आवर चीज ही का नतीजा मालूम होती है, मेरी दांत में ये किसी चीज का नशे का आदि नहीं है, हमीद ने कुछ सोचते हुए कहा। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया और ताकीद करके चला गया कि आधे घंटे तक होश न आने पर उसे दोबारा तलब किया जाए, लेकिन कासिम को आध घंटे से पहले ही होश आ गया और उसने हमीद को देखकर इस तरह आंखें फाड़ दी जैसे वहां हमीद की मौजूदगी पर उसे हैरत हुई हो। क्यों, क्या हो गया था तुम्हें? हमीद ने उसे घूरते हुए कहा। तुम कौन हो? कासिम ने भराई हुई आवाज में कहा। सफा नंबर 14। क्या मतलब? मैं पूछती हूँ तुम कौन हो? हाई हाई, जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी, कासिम लचक कर बोला। अबे क्यों शामित आई है कासिम ये बच्चे, मैं पूछता हूँ ये क्या हरकत? हाय अल्लाह मेरा दुपट्टा, कासिम ने बदन चुराते हुए कहा। निकलो यहाँ से ढीठ कम व्याख्त, अरे अम्मी जान, हमीद ने उसे गौर से देख रहा था। कासिम में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो हंसे बगैर इस किस्म के मजाक कर सकता, और ना वो इतना अच्छा अदाकार ही था कि उसकी आंखों पर शर्मीलेपन की झलकियां नजर आ सकती। हमीद उसकी संजीदगी पर भौंकला गया। कासिम पागल हो गया है, उसने सोचा, ये पागलपन ही हो सकता है, उसे मजाक ना समझना चाहिए। कासिम जैसा कोर मगज आदमी औरतों की एक्टिंग नहीं कर सकता, और फिर अगर ये मजाक ही होता तो कासिम उसकी इब्तदा करने से पहले सिर्फ सोच कर ही हंसते हंसते लौटन कबूतर हो गया होता। कासिम क्या बात है, आखिर तुम क्या चाहते हो? कासिम ने हैरत से दोहराया, फिर यक बैक हलक फाड़ने लगा। अरे दौड़ो लोगों, यहाँ एक पागल घुस आया है, बचाओ बचाओ मैं मरी। अबे ओ कासिम, मैं तुझे काट कर रख दूंगा, हाय काट कर रख देगा, दौड़ो बचाओ, कासिम फिर चीखा, देखो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा, अरे मैं भी यही कह रही हूँ कि जाओ, हाय अल्लाह मेरा दुपट्टा। वो इसी तरह बदन चुरा रहा था जैसे किसी बाहया औरत को दुपट्टे की तलाश हो। हमीद उसके मुतालिक संजीदगी से सोच रहा था, कहीं अचानक इसकी जिंस तो नहीं तब्दील हो गई, क्योंकि आजकल ये मर्ज कुछ आम सा हो चला है, तो क्या घर से इतनी दूर गरीबुल वतनी में वो जिंस तब्दील कर देगा। सफा नंबर 15। नहीं नहीं ये जुल्म है, हमीद का जहन फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोलने लगा और फिर उसे बेतहाशा हंसी आ गई। कासिम के औरत बन जाने का तसव्वुर ऐसा ही कहका खेज था, वो अपने कमरे में वापस आ गया था। वो आराम कुर्सी में नीम दराज पाइप के हल्के हल्के कश लेता रहा। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हमीद समझा शायद कासिम राह रास पर आ गया है। आ जाओ, उसने कहा, लेकिन दस्तक बदस्तूर जारी रही। आ जाओ, इस बार उसने अंग्रेजी में कहा और सुपरवाइजर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आप ही चलिए जनाब, उसने मुर्दा सी आवाज में कहा। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता, क्या बात है, आपके साथी ने एक हंगामा बरपा कर रखा है, समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं। हमीद उसके साथ कासिम के कमरे में आया। कासिम कमरे के वश में खड़ा दहाड़ रहा था, चोर चोर सब चोर है, मेरा संदूक कौन ले गया? कैसा संदूक? हमीद आंखें निकालकर बोला, तुम्हारे साथ कपड़ों का सिर्फ एक ही संदूक था, ये मेरा संदूक नहीं है। कासिम संदूक की तरफ इशारा करके बोला, इसमें मर्दाने कपड़े हैं। ओ, हमीद दांत पीछकर बोला, उसे मुक्का दिखाते हुए बोला, होश में आ जाओ वरना बहुत बुरा हशर कर दूंगा। ए मिस्टर, तुम इतनी बेतकल्लुफी से बातें कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। दफतन हमीद ने अंग्रेजी में गुफ्तगू शुरू कर दी। मकसद ये था कि कासिम जवाब देने के मामले में मोहतात हो जाएगा, क्योंकि सुपरवाइजर भी मौजूद था। अरे ये क्या बकवास शुरू कर दी, कासिम ने सुपरवाइजर की तरफ इशारा करके उर्दू में कहा। ये आदमी भी इसी तरह बोल रहा था, मैं अपनी जबान के अलावा और कोई जबान नहीं समझ सकती। सफा नंबर 16। तुम अंग्रेजी नहीं समझ सकते, हमीद ने उर्दू में कहा। नहीं, कासिम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया और दफतन हमीद को ख्याल आया कि कहीं वो अपनी याददाश्त तो नहीं खो बैठा। कासिम के लिए ये मुमकिन भी था, क्योंकि वो पहले ही जहनी रौ बहकने का मरीज था। तो क्या वो बेहोशी उसकी याददाश्त पर असर अंदाज हुई थी? इस ख्याल ने हमीद को बौखला दिया। कॉन्फ्रेंस। केली ग्राहम अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रही थी। वो बहुत अच्छा जिस्म रखती थी, बड़ी फुर्तीली थी, पर जहानत का क्या पूछना। जहानत ही के बिना पर वो 5 ममालिक की कॉन्फ्रेंस में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रही थी। वो अपने मुल्क की सीक्रेट सर्विस की एक सरगर्म रुकन थी और इसके साथ ही इसे जहर की पुड़िया के नाम से याद करते थे। वैसे उसका जाहिर बड़ा दिलकशी रखता था और चेहरे से जाहिर होने वाली मासूमियत का तो ये आलम था कि मजहबी तस्वीर बनाने वाले आर्टिस्ट अक्सर उसे मुकद्दस मरियम के लिए पोज देने की तरगीब देते रहते थे। आंखें बड़ी बड़ी और नशीली थी, जिन पर हर वक्त खुनुदगी किसी कैफियत तारी रहा करती थी। ये आंखें बड़ी जाहिर करती थी कि वो एक काहिल और ख्वाब देखने वाली लड़की है। कोई नहीं कह सकता था कि वो अमली जिंदगी में भी कोई कदरों कीमत रखती होगी। उस वक्त उसका हेलीकॉप्टर शुमाली अमेरिका के अजनूबी गैर आबाद हिस्से पर परवाज कर रहा था। वो 5 दोस्त मुमालिक की सीक्रेट सर्विस के मेंबरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गर्ज से यहाँ आई थी। जीरो लैंड की तलाश का सिलसिला दरपेश था। इन 5 दोस्त मुमालिक में जीरो लैंड के जासूस पकड़े गए थे और इनके पास ऐसी हैरत अंगेज चीजें बरामद हुई थी जिन्होंने इन दहाई तरक्की याफ्ता मुमालिक को भी हैरत में डाल दिया था। सवाल ये था कि जीरो लैंड है कहाँ? इसके जासूस मरते मर जाते थे, लेकिन सरजमीन की निशानदेही नहीं करते थे। सफा नंबर 17। ये कॉन्फ्रेंस शुमाली अमेरिका के एक गैर आबाद मकाम पर होने वाली थी, اطلاعات کے مطابق ہیلیکاپٹر اسے ایک جگہ اتار دیتا اور پھر وہاں سے کسی کی رہنمائی میں اسے کچھ دور پیدل چلنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد ہیلیکاپٹر کے پائلٹ نے اسے آگاہ کیا کہ اب وہ ہیلیکاپٹر نیچے اترے گا۔ دور تک خشک اور بھورے رنگ کی پہاڑیاں بکھری ہوئی تھی۔ کیلی نے دوربین ہاتھوں سے چھوڑ دی اور وہ راستے بھر ترب و جوار کا جائزہ لیتی آئی تھی۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوا۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سنیں۔